ओम नमः शिवाय। मैथिली शरण गुप्त और उनका साकेत, साकेत का नवम सर्ग। डॉक्टर बीरेंद्र कुमार पाठक पांडेय, सपना अशोक प्रकाशन, रामपुर, रामनगर, वाराणसी। वाचक श्यामा सुतोष मिश्र, BA द्वितीय वर्ष। साकेत में वर्णित कथा वस्तु या साकेत के नवम सर्ग का सारांश। नवम सर्ग काव्य के प्रणयन का मूलाधार है। इसमें उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। कवि का प्राण भी इसी सर्ग में आकर बस गया है, अपितु उर्मिला के विरह प्रलाप के कारण कथावस्तु में कोई जोड़ नहीं है। यह पूरा सर्ग मुक्तक शैली में लिखा गया है। वह विभिन्न ऋतुओं में किस प्रकार व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था को पहुंच जाती है, नारी मनोजगत का सुंदर वर्णन है। सर्ग का आरंभ जनक जी के वंदना से होता है। तत्पश्चात कवि कविता और करुणा के महत्व पर प्रकाश डालता हुआ उर्मिला के विरह वर्णन के मुख्य प्रसंग पर आता है। उर्मिला एक विवेकशील युवती एवं गृहवधू के रूप में इस बात से चिंतित है कि कहीं मेरे कारण परिवार के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा या अन्य चिंता न हो। इसीलिए वह राजभवन का परित्याग कर अपनी सखी सुलक्षणा के साथ उद्यान में आकर रहने लगती है। समय काटने के लिए वह अपने साथ कुछ ग्रंथ, वीणा और तूलिका लेकर आती है। पति लक्ष्मण के दूर चले जाने के कारण उर्मिला का मन खाने पीने, श्रृंगार या विश्राम किसी में नहीं लगता है। उसकी सखी इस बात से चिंतित होती है और उसका मन बहलाने के लिए जीवन की बहुविध सुविधाएं एवं विनोद सामग्री जुटाती रहती है, किंतु उर्मिला का मन किसी में नहीं लगता। वह उनसे अपने को अलग करती रहती है। इसके पीछे उसकी मूल भावना यह है कि वह किसी सुख का उपभोग अकेले कैसे करे। कोई सच्चा प्रेमी ऐसा नहीं चाहता। उसके वो रोम रोम में लक्ष्मण समाये हुए हैं। अतः पशु पक्षी, तृण पुष्प, लता कुंज, सरी सरोवर, सूर्यचंद्र, जिस पर भी वह दृष्टि डालती है उससे उसके मानस में लक्ष्मण की सुध का आवेग उमड़ आता है। कभी उसे वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक दिनों का स्मरण हो आता है, तो कभी रम्य चित्रकूट के चिरानंद शांति प्रदायनी प्रकृति सुषमा का, जहाँ से अभी वह लौट कर आई है। वह स्वयं कभी बातचीत करके अपने जी को बहलाना चाहती है तो कभी चित्र बनाकर, किंतु उसका जी किसी काम में नहीं लगता ही नहीं। उर्मिला वियोग के दुख को दूसरों के साथ बैठकर भूलना चाहती है। इस कार्य के लिए वह सुखी और संभोगी स्त्रियों को नहीं बुलाती, वरन समदुखियों को बुलाती है, क्योंकि उनके प्रति उसके मन समान भाव से प्रेरित संवेदना है। अपने सखी को वह समदुखनी की खोज के लिए कहती है, हे सखी, इतनी बड़ी अयोध्या में क्या मेरे समान दुखी कोई और स्त्री नहीं है जिसकी मैं सखी बन सकूं और जो मेरे समान हंसी रोई हो। उर्मिला बेकार समय में कुछ शिक्षण कार्य करना चाहती है, जिससे बेकार समय कट जाए और ललित कलाओं का अभ्यास बना रहे। उर्मिला एक दिन अपनी सखी से पूछती है कि मैं कौन सा चित्र बनाऊं। कुछ चित्रों की कल्पना उसके मन में है, उसके स्वरूप को समझाती है। एक स्वरूप है कि पथ में जाते समय राम, लक्ष्मण और सीता के सामने एक नाला आ गया। किनारे पर श्री राम और सीता खड़ी हैं और मेरे पति लक्ष्मण जल की थाह ले रहे हैं। दूसरे स्वरूप में सीता जी श्री राम के सहारे खड़ी हैं, और लक्ष्मण जी उनके पैर से कांटे निकाल रहे हैं। तीसरे स्वरूप की कल्पना में उर्मिला कहती है, किसी लता को अपने हाथ में झुकाकर आर्य पुत्र खड़े हैं और जीजी फूल तोड़ रही हैं। उर्मिला अपने बचपन से यौवन तक के विविध सुखद दुखद प्रसंगों का स्मरण करती है। वह विभिन्न पक्षियों को संबोधित कर अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त करती है। उर्मिला कहती है, अरे सखी, इन सभी पक्षियों को उड़ा दो। सुख से पूछती है, मेरे आर्य कहाँ गए हैं? सुंदर केस वाले मेरे कांत कहाँ गए हैं? ससक से पूछती है, अरे ससक, क्या तुझे विदित है कि तेरे वे नाथ कहाँ हैं जो एक साथ ही तुझे पर एवं मुझ पर हाथ फेरा करते थे? फिर उर्मिला कपोत चकोरी सबसे अपने प्रियतम के बारे में पूछती है और कहती है, हे सखी, इन पक्षियों को मत उड़ाना, क्योंकि ये पंजरगत हो जाने से उड़ना भूल गए हैं। उर्मिला वेदना को अपनी सहचरी मान बैठी है, वह उसी में रहना चाहती है। वह कहती है, अरे सजनी, जहाँ प्रिय विरह ने मुझको कष्ट दिया है, मुझे भुला दिया है, वहाँ मेरे साथ उपकार भी किया है। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त सुदबुद्ध हरण कर ली गई है, तथापि काल ज्ञान का विचार अभी शेष है। उसकी सभी सखी दीपक जला कर लाती है, उस पर पतंगे टूट टूट कर गिरने लगते हैं एवं अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इधर दीपक के जलने में उसके जीवन की शोभा है। सखी से कहती है, अरे सखी, तू देख, दोनों ओर प्रेम पलता है। इधर पतंग दीपक पर गिर कर जलता है, उधर स्वयं दीपक जल रहा है। विरहिणी बाला को किसी भी प्रकार निद्रा नहीं आई। वह बिलख कर सखी से कहने लगती है, अरे सखी, मुझे स्वप्न भी न आया और रात बीत गई। अरे तारे भी अस्त हो गए, जिनको गिन गिन कर रात समाप्त करती हूँ। अब मैं प्रातः में क्या गिनूँ? उर्मिला का त्याग अवर्णनीय था, तो उसका विरह अगाध। जीवन का सर्वोत्तम काल उसने विरह में लगाया। कवि ऋतु वर्णन के आधार पर वह उर्मिला के एक वर्ष के विरह का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हुए संकेतित कर देता है कि उस दीर्घ विरहावधि के शेष दिन भी इसी प्रकार बीतते हैं। प्रत्येक ऋतु बारी बारी आती है और अपना कुछ न कुछ प्रभाव उर्मिला के हृदय पर छोड़ जाती है। ऋतुओं के प्रति उर्मिला की प्रतिक्रिया एक विरहिणी की प्रतिक्रिया है, सामान्य प्रकृति प्रेमी की नहीं, और यह स्वाभाविक भी था। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से कवि ने मिलन विरह के सत सत अनुपम चित्र अंकित किए हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया, वसंत ऋतु आ गई। वसंत विरहणी नायिका के लिए अत्यधिक कष्टकर होती है। पुनः ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ, वसंत मरने लगा, कोकिल स्वर समाप्त हो गया। उर्मिला ग्रीष्म ऋतु को तपयोगी समझती है, गर्मी से दग्ध होकर वृक्ष नद वापी सब सूख गए हैं। ग्रीष्म पवन कभी धूल उड़ाता है तो कभी इतना मंद भी कि पत्ता न खरके। वापी के सारे कमल सूख गए हैं। उर्मिला सोचती है, अब वह कीचड़ किसे देगी? विरहानल से भस्म हुई सी उर्मिला व्यथित हो जाती है। वह समझने लगती है कि हाय, यह ग्रीष्म है अथवा प्रीतम के तप का ताप। पावस ऋतु का पदार्पण होता है। काले काले बादलों का दर्शन करके चातक पी पी की मधुर ध्वनि करने लगते हैं। मयूर मेघ के दर्शन करके नाचने लगते हैं। वर्षा ऋतु में चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे, झाड़ और झंखाड़ आदि उग आए हैं, जिनमें मार्ग रुक गए हैं। नए अंधकार में जुगनू एवं विद्युत की कौंध पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही है। घूमड़ घूमड़ कर आकाश में बादल छा जाते हैं। उर्मिला कहती है कि अरे सखी, ये विरहन के उच्छ्वास हैं जो सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। विरहजन्य दशा में वर्षा और अधिक काम को उद्दीप्त कर रही है। उर्मिला वर्षा से कहती है, तुम निरंतर बरसो, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। अर्थात जितना पानी तू वर्षा के रूप में छोड़ेगी, मैं उस रूप में उतना ही पानी छोड़ दूंगी। वह कहती है, हे घन, तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण संसार को नव यौवन प्रदान करके बरसते रहो। तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो, जो सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम ताप के नष्ट करने वाले हो, तुम बरसो। तुम संसार में जड़ चेतन में भी एक बिजली की स्फूर्ति भर देते हो। मिट्टी में सने हुए अंकुर तुम्हारे कारण चिन्मय हो गए जाए। सखी मयूरों के मध्य में जाना चाहती है, किंतु उर्मिला उसको रोक लेती है। अरे सखी, उधर मत जा, वहाँ मयूर नृत्य कर रहे हैं, वे तेरे जाने से कहीं संकुचित न हो जाएं। उर्मिला को इस पावस ऋतु में पूर्व दिवसों का स्मरण हो आता है। अपनी सखी से वह कहती है, जब मैं क्रीड़ोद्यान में एक बार प्रिय लक्ष्मण के साथ झूला झूल रही थी, झूले से उन्हें डर लगता था। जैसे ही पैग मार कर मैंने झूला को तेज की, प्रियतम मुझसे लिपट गए। मैं बहुत प्रसन्न थी। एक रात्रि को मैं अपने आलिंद में खड़ी थी, घनघोर बादल छा गए, झिंगरों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। अचानक ही बिजली चमक उठी। मैंने देखा प्रियतम चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। मैं लज्जित हो गई और अपने को प्रिय की छाती से लिपट कर छिपा लिया। हे सखी, आज तो उन स्मृतियों से दुख ही पैदा होता है। हे चंद्रमा, तुम हंसो, हे फूलो, तुम भी फूलो। मेरे भाग्य में तो रोना लिखा है, क्योंकि रोने के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ, और सब तो प्रसन्न होकर आनंदित हों। शरद ऋतु आरंभ हो गई। उर्मिला अपने प्रियतम के शरीर की शोभा शरद ऋतु के उपकरणों में देखती है और कहती है, हे सखी, देखो शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, खंजन पक्षी आ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन खंजन पक्षियों के आने के माध्यम से मेरे प्रियतम ने ही अपने नेत्र इस ओर घुमाए हों। फैला हुआ धूप प्रियतम के शरीर का प्रकाश है, तालाब में खिले कमल उनका सरस और स्निग्ध मन है, हंसते समय उनके लाल लाल होंठ जो प्रस्फुटित हुए हैं, उसी के कारण ये दोपहरिया के फूल खिल उठे हैं। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे शुभ आगमन पर आकाश भी प्रसन्नता पूर्वक ओस की बूंदे रूपी मोती न्यौछावर कर रहा है, और इधर मेरे नेत्रों में जो आंसू आ गए हैं, वही तुम्हारे शुभ आगमन के अवसर पर अर्पित अर्घ्य हैं। हे शरद ऋतु, तुम इन सबको स्वीकार कर कृतार्थ करो। उर्मिला, मछली, भ्रमरी, बगुले, हंस, कुररी पक्षी को सबको संबोधित कर उसे दारुण विरह की कथा सुनाती है, और उन्हें वियोग से बचने को कहती है, सांत्वना देती है। वह कोक को कहती है, तुम शोक मत करो, वियोग का धैर्यपूर्वक सहन करो। हे कोकी, तू भी शोकमग्न न हो, संसार में अकेली तू ही कष्ट या वियोग में नहीं पड़ी, मैं भी तुम्हारी ही तरह वियोग सह रही हूँ। या सोच ले कि इस वियोग के बाद संयोग का अवसर भी आएगा। उर्मिला चंद्रमा की चांदनी को देखकर कहती है, हे सखी, मेरे हृदय में जो वियोग पल रहा है, उसके अभी अंकुर ही फूटे हैं, किंतु शरद ऋतु की चांदनी और शीतलता फैलाता हुआ चंद्रमा इस वियोग के अंकुर को और पुष्ट कर रहा है। तारों से भरी हुई रात के सौंदर्य को देखकर पागल हो जाती है। नदी का कलकल छलछल करती हुई रात के सौंदर्य को देखकर, धारा को देखकर उससे चंचल नायिका की याद आती है। नदी की चंचल लहरें उसे किसी नायिका के भूविलास जैसे लगती हैं। नदियां अपना पथ प्रशस्त करते हुए अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उर्मिला को लगता है कि मैं अपने प्रियतम से स्वयं नहीं मिल सकती, मेरे ऊपर अवध की सीमा है, उसे स्वयं आकर मिलना है। शरद ऋतु विलाप करते करते व्यतीत हुई, किंतु विरहड़ी उर्मिला का दुख दूर न हुआ। हिम्मत ऋतु का पदार्पण हुआ। उर्मिला सखी से कहती है कि हे सखी, हमें हेमंत का स्वागत करना चाहिए, मैं तो प्रिय से वियुक्ता नारी हूँ, क्या इन्हीं आंसुओं से उनका स्वागत करूँ? यदि मेरे समीप आज प्रियतम होते तो मैं इस हेमंत ऋतु का स्वागत गुड़ घी लेकर कहती। हे श्रेष्ठ ऋतु, जब मैं तेरे कारण प्रवाहित अति शीतल पवन के कारण शिष्कारी भरती हुई अपने प्रियतम के पास सोती थी, तब मुझे अपने पार्श्व में सीसी करती हुई पाकर तुझे वे अपना उपकारी मानते थे। उर्मिला ने कहा कि एक दिन मैंने देवर शत्रुघ्न से कृषकों का हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी खुशहाल हैं, इंद्रदेव की इस वर्ष दूनी दया है, अन्न गुड़ एवं गोरस की वृद्धि हुई है, लेकिन उनका कहना है कि इसमें स्वाद नहीं है। अरे सखी, इस राज्य के कारण ही प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण का वनवास हुआ। यह अखाद भूमि जब 14 वर्ष प्रत्येक ऋतु का भोग कर लेगी, अर्थात 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ प्राणनाथ इधर पधारेंगे। उर्मिला अतीत की शीतकालीन एक घटना का स्मरण करके सखी से कहती है कि एक बार प्रियतम मेरे कक्ष में आकर रोमपट लाल वस्त्र का परिधान धारण करने को दिए, मैं झट से उठ खड़ी हुई, जिससे मेरे ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र हट गया। तेज हवा चल रहा था, हम एक दूसरे को बाहुबंधन में भींच रहे थे। हेमंत ऋतु के अंत में शिशिर ऋतु का आगमन हुआ। सर्दी और भी बढ़ गई, किंतु विरहिणी का विरहानल और भी प्रतीत हो गया। उर्मिला कहती है कि अरी सखी, इस पाले एवं कोहरे के कारण धूप को देख मैं तो उससे जल रही हूँ। शीतकाल की रात्रि अंधकारमय होती है, किंतु श्वेत कोहरे के कारण सभी जगह श्वेत सा धूम्र छा गया है। शिशिर ऋतु का संबोधन करती हुई उर्मिला कहती है, वह व्यर्थ ही वन उपवन में घूमती है, उसे अपने सारे उपकरण उर्मिला के शरीर में ही मिल सकते हैं। हे शिशिर, मेरा शरीर पतझड़ से युक्त है, मैं विरह से दिन रात कांपती हूँ, मेरा शरीर पीला पड़ गया है, ये सारे लक्षण तेरे हैं। उर्मिला मकड़ी को देखकर सखी से कहती है कि हे सखी, तू मकड़ी को न हटा, क्योंकि वह तेरे पास सहानुभूति के भाव से आई है। जिस प्रकार मकड़ी जाल में फंसी है, उसी प्रकार मैं भी जाल में फंसी हुई हूँ, हम दोनों की समान दशा है। मकड़ी स्वयं जाल बुनकर फंसती है और मैं अपने विरह जाल में फंसी हुई हूँ। शिशिर ऋतु का सनई सनई अंत होने लगता है। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। सूर्य उत्तरायण हुआ। भ्रमर मंडराने लगे। लता पुष्पित होने लगी। काली कोकिल कूकने लगी। होली पर्व का आगमन हो गया। सरसों के पीले फूल खिल गए। लगता है नायिका ने अपनी पीली चोली फाड़ दी है। प्रकृति के लाल लाल अधरों पर हरियाली छा गई है। चारों तरफ होली की धूम मची हुई है। उषा काल का गगन लाल रंग का नहीं हुआ, मानो उषा रूपी नायिका ने दिन के वस्त्र में लाल रोली मल दी हो। फूलों में पराग आ गया है, वह ऐसा ज्ञात होता है मानो अनुरागी पुष्पों ने रंगने के हेतु अपनी झोली पराग से भर दी हो, उन पर ओस पड़ रही है। उससे ऐसा ज्ञात होता है मानो उसने उनके खुले हुए संपुट में केसर घोल दी हो। पुष्पों की शोभा देखकर विरहड़ी उर्मिला दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो वे उसको मारना चाहते हैं। वह कहती है, हे कामदेव, मुझे पुष्प न मारो, मैं वियोगिनी हूँ, वसंत के मित्र होकर तुम कटुगरल की वर्षा नहीं तुम्हें कटुगरल की वर्षा नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा शर्म व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें यहाँ विफलता ही मिलेगी। मैं भोगिनी बाला नहीं, उसे क्रोध आता है तो कहती है, हे काम सावधान, यह तुझमें बल है तो यह मेरे मस्तर पर लगा हुआ सिंदूर बिंदु देखो, यह हर नेत्र की तरह तुझे भस्म कर डालेगा। अरे कंदर्प, तुझे यदि रूप का दर्प है तो मेरे पर तुझसे भी अधिक रूपवान है, उन पर इसे न्यौछावर कर दे। ले मेरी चरण धूल ले जा और अपनी पत्नी रथ पर डाल दे। अशोक वृक्ष के तले विराज कर योगिनी उर्मिला को पूर्व कथा का स्मरण हो जाता है। वह कहती है, हे अशोक वृक्ष, तुझे पुष्पित देखकर प्रीतम ने कहा था कि हे प्रिय, यह पहले ही पुष्पित हो गया है क्योंकि इसको तुम्हारे पदाघात का भय था। मैं खिलखिला कर हंस दी और कहा, हे नाथ, तुम्हारे कहने में भूल है। यदि नंद अपने चरण कमल की प्रीत इसे प्रदान न करती तो यह पुष्प किस प्रकार फूलते। कमल के फूलों को हमेशा खिलते रहने को कहती, क्योंकि रूप रस गुण गंध के कारण कमल एकमात्र उपमान है जिसके कई उपमेय हैं। भ्रमरी को अपने प्रिय कमल के अंग में बैठी हुई देखकर उर्मिला कहती है, हे षटपदी भ्रमरी, तू अपने प्रिय सरसिज में लीन होकर बैठी है, तू धन्य है। मैंने तो अपने प्रियतम के साथ सतपदी सात भावरे दी थी, तब भी मैं गतिहीन होकर बैठी हूँ। कलियों को विकसित होते देखकर कहती है, तुझमें जितनी उत्कंठा खिलने की है उतनी ही मुझमें प्रिय से मिलने की है। कोयल से कहती है, हे कोयल, तेरी इस कूक एवं कूकने को सुनकर मेरे विरही हृदय में हूँक उठ रही है। यह हूँक कितने करुणाजनक दारुण एवं गंभीर है। ऐसा लगता है मानो यह हूँक नभ का अंतस्थल विदीर्ण करके निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नेत्र सनीर हो गए हैं। उर्मिला मन और अश्रुओं को संबोधित करके कहती है, हे मन, तू एक था, मैंने तुझे रोक थाम लिया, किंतु इन दो नैनों ने नीर बहाकर भरम खो दिया है, अर्थात मेरे विरह को प्रकट कर दिया है। हे सजनी, मेरा गान हो रहा है, उसकी एक भी तान प्रिय कर्ण तक नहीं पहुंच पाती, शून्य में समस्त स्वरताल बिखरे पड़े रहते हैं। इस प्रकार गाने में आलाप भरना व्यर्थ हो गया है, मेरा भावानंद सदैव प्रिय के पास उड़ने के लिए तड़पता रहता है, किंतु उसे फुसला कर छंद में उसे बांधना चाहती हूँ। हे सखी, हमारे इस मन में यही इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं सभी घर बार छोड़कर उसी वन में जाकर निवास करूं, जिसमें मेरे प्रिय स्वामी रह रहे हैं। मैं उनके व्रत में विघ्न नहीं डालना चाहती, तथापि उन्हें देखकर मुझे सानंद प्राप्त होगा कि प्रिय अच्छे से हैं। मन में इच्छा होती है कि मुझे प्रियनाथ के दर्शन हो जाएं, तो उनके चरण रज को अपने शरीर में मल लूं, मैं स्वयं अवधि ही बन जाऊं, उसमें यत किंचित भी विलंब न लगाऊं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मर मिटना पड़े तो ऐसा ही करके स्वयं आकर उनको प्राप्त करूं। उर्मिला बार बार संयोग के क्षणों का स्मरण करती है, संयोग की घटनाओं का स्मरण कर उसे लगता है कि वह सब कुछ स्वप्न था, मैं पुनः इस जीवन में नहीं देख सकूंगी, मेरा भाग्य इतना गिर गया है कि उसे गिरते गिरते घूरे के भी दिवस व्यतीत हो गए हैं। उर्मिला उर्माद के वशीभूत होकर सखी से कहती है, अरे सखी, मेरे हृदय में कभी यह विचार होता है, अवधि पूर्ण हो गई है और मेरे नाथ यहाँ आ गए हैं। अरे तू जल्ला, जिससे मैं अपने प्रिय नाथ के पद्म तो धो लूँ, कुछ नहीं तो दृगम्भ से उनके चरण को प्रखार लूं। वे कुंजों में जाकर मयूरों हंसों से मिल रहे हैं, कहती हैं मैं हीन हूँ तुम महान हो, लेकिन तुम्हें प्राप्त करने के पश्चात मैं दीनहीन नहीं हूँ। वह प्रश्न पूछने लगती हैं कि प्रभु राम कहाँ हैं, जीजी सीता कहाँ हैं, क्या वे नहीं आए, तुम अकेले आए हो। यदि मेरे प्रलाप के कारण तुम्हें राम ने वापस भेज दिया है तो पुनः वन में चले जाओ, मैं विकल गर्विणी रहना पसंद करती हूँ, भ्रष्ट गर्विणी नहीं। हे तुम स्वतः लौट आए हो तो तुम्हारी साधना भ्रष्ट हो गई है। तुम धर्म छोड़कर यदि मुझसे मिलते हो तो मैं सिर फोड़कर मरना पसंद करूँगी। उर्मिला सोचती है इन कठोर वचनों को सुनकर भी लक्ष्मण उसे क्षमा कर दिए हैं, उसे समझा रहे हैं, हे प्रिय मैं वन में था, तू राज भवन में हो, तू केवल क्षणिक ताप से उन्मत्त हो गई, मैं जंगल में सो न सका, मैं रो भी न सका, वहाँ मेरे लिए कठिन कर्म क्षेत्र था, मैं हमेशा तुम्हें वहाँ पाप पुण्य की संगिनी मानता रहा, क्या मैं तपोभ्रष्ट हो गया हूँ, तुम मुझे मत छुओ, तुम सुखपूर्वक रहो, मुझे विदा कर दो। उसी समय उर्मिला अपनी सखी से तूलिका मंगवाती है, वह नेत्रों से प्रीतम की आई हुई छवि को अंकित करना चाहती है। अंत में उर्मिला प्रभु से वरदान मांगती है कि उसका प्रीतम वन में अपना कर्तव्य पालन करते रहें और वह उसके प्रतीक्षा में लीन रहे। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी ने जल में प्रवेश करके नारद के साप से अपनी रक्षा की और सती पार्वती ने शिव के शोक के कारण अग्नि में प्रवेश करके अपनी रक्षा की, परंतु यह उर्मिला जीवित रहकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहेगी। इस प्रकार यह सामान्य विधि विधान चलता रहे। इस प्रकार उर्मिला के कोमल हृदय पर स्मृति रूपी शिला का भारी बोझ था, जिसको उसने नेत्रों से निरंतर बहती हुई अस्त्रधारा से तिल तिल कर काट दिया। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। द एंड।